प्रजा जनरांजना। जो सोदनांदना प्रजा जनरांजना, जो सोदनांदना यमुना तीरा बनचारी, जय राथ माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन बल्लव जीवरदारी, जय गोपी जन बल्लव यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन प्रजा जनरंजन, यशोदानंदन यमुना तीरा गुणचारी, यमुना तीरा बन जय राध माधव कुंज बिहारी, जय राध माधव जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधारी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय। जय नित्य परमेशमृत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय नित्य लापुरुषम सुपर श्री भक्ति ठाकुर से प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद भागवत कंथराज की जय। समवत भक्तविंद की जय। समानंद प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंद नाम श्रेष्ठ मनुमपी सचिपुत्र मात्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं मरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुंड गिरीवरमोह राधिका माधवा सं प्राप्त जैसे पथित कृपयांसी गुरुं तं नतोऽस्मि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पैतानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्राधिकमादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ने। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावतिव छविसुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। सासुक निवेदितास्तद्बुद्धस्तन्न भावैपजीतुरुचिराकृष्ट सारस्तदियम् वितनुत कृपाजस्तत्तदीपं पुराणं तमखलब्रजगणं व्यससूरनतोऽस्मि। भवे भवे यथा भक्तिपादस्तव जायते तथा कुरुसुदेवेशनाथस्तनजता प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनां प्रणामं दुःखशमनस्तु तं नमामि हरिपरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरयेत्। नाष्ट प्रयेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम् भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। श्रीमद् भागवतम नमः स्कंध अष्टम अध्याय श्लोक नंबर 24। प्रशांत मायागुणं कर्मलिंगं अनामरूपां सात असत विमुक्तां ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहां नमामहे त्वां पुरुषां पुराणां प्रशांत माया गुणकर्म लिंगां नाम रूपं सत्सद् विमुक्तं गानोपदेशाय गृहीत देहां नमामहेतां पुरुषं पुराणं प्रशांत माया गुणकर्म लिंगं नाम रूपं सत्सद् विमुक्तं गानोपदेशाय गृहीत देहां नमामहेतां पुरुषं पुराणं शांत माया गुणकर्म लिंगं नाम रूपं सत्सद् विमुक्तं गानोपदेशाय गृहीत देहां नमामहेतां पुरुषं पुराणं बोलो प्रशांत हे पूर्णतया शांत माया गुण प्रकृति के गुण कर्मलिंगम सकाम कर्म से जाने वाला अनाम रूपम जिसका कोई नाम या रूप न हो सत असत विमुक्तम प्रकृति के व्यक्त तथा अव्यक्त गुण से परे ज्ञान उपदेशाय दिव्य ज्ञान भगवत गीता का वितरण करने के लिए गृहीत देहम जिसने शरीर धारण किया नमामहे मैं नमस्कार करता हूँ त्वाम तुमको पुरुषम परम पुरुष को पुराणम आदि अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा हे परम शांतिमयी स्वामी यद्यपि वह प्रकृति सारे सकाम कर्म तथा उनके फल स्वरूप नाम तथा रूप आपकी सृष्टि है किंतु आप उनसे अप्रभावित रहते हैं अतएव आपका दिव्य नाम भौतिक नामों से भिन्न है और आपका स्वरूप भौतिक स्वरूप से भिन्न है आप भौतिक शरीर के ही समारूप धारण करके भगवद गीता जैसे ज्ञान का हमें उपदेश देते हैं लेकिन आप रहते हैं परम आदि पुरुष हो अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। श्री यमुनाचार्य आपने स्तोत्र रत्न में 43 निम्न श्लोक दिया है भवंतम एवानुचरण निरंतरम प्रशांत निश्चेष मनोरथांतरम कदाह मैकांतिक नित्य किंकर पहर्ष्याम सनाथ जीवितम आपकी सेवा करने से मनुष्य भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाता है और पूर्णतया शांत रहता है। हे भगवान वह समय कब आएगा जब मैं आपका स्थायी नौकर बनकर आप जैसे स्वामी को पाकर सदैव प्रसन्न रह सकूंगा। मनोरथे ना सती धावतो वही जो मनोरथ से कर्म करता है उसे भौतिक कार्यकलाप पर उतर कर आना होता है किंतु भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के भौतिक कर्मश अर्थात सर्वदा अनुपस्थित रहते हैं इस भगवान को प्रशांत कहकर संबोधित किया गया है। परमेश्वर का कोई नाम या रूप नहीं है केवल मूर्ख ही सोचते हैं कि भगवान का नाम और रूप भौतिक है। अवजनंती मांगमुड़ा मानसिंह तुनु माश्रिकम भगवान की पहचान तो इतनी है कि वो आदि पुरुष है तो भी अल्पज्ञानी सोचती है भगवान रूपहीन है वो भौतिक दृष्टि से रूपहीन है किंतु उनका दिव्य रूप है सच्चिदानंद विग्रह। इस ब्रह्मांड में गाधा कौन है? श्रीमद् भागवत कहते हैं सबीर बराह अष्टक्षरे संसुष्ट पुरुष पथु नजत कर्ण पथे पेथु जातु नाम गदाग्र जो है ये सब गधा है। सबीर शब्द का क्या है? कुत्ता। वीर शब्द का अर्थ है सांडास उसका भी सांडास खाने वाला है। सबीर बराह अष्टक्षरे जिसका आठ खूर है ये लोग को गाधा कहते हैं। क्यों? क्योंकि नजोत कर्ण पथो पेथी जातु नाम गदाग्रज गद कृष्ण का भाई का नाम है उनका अग्रज श्री कृष्ण उनका नाम जिसका कान में नहीं जाता है वो गाधा है संसार में। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद में है तो यहाँ कितना सुंदर श्लोक है प्रशांत माया गुणकर्म लिंग मनाम रूप सत्सद विमुक्तम गानोपदेशाय गृहीत देहं नमामहेतं पुरुषं पुराणं। कितना सुंदर श्लोक है। ये श्लोक अगर किसी का कर्ण पथ में प्रविष्ट होता है वही बोलता है नमामहे आपको प्रणाम करता हूं। इतना सारा गुणावल के द्वारा भगवान को संबंध प्रशांत क्यों कहा? इससे पहले सगर का 60,000 लड़का आया था, उन्होंने बिना वजह से क्रोध किया, लेकिन मुनि ने कपिल मुनि निर्विकार रहा, क्रोध करने के बावजूद चुपचाप, इसलिए प्रशांत है। तो अंशुमान ऐसे सब कर रहे हैं, आप प्रशांत हो कि वो लोग क्रोध किया, लेकिन आपने क्रोध नहीं किया, इसलिए आप प्रशांत हो। प्रशांत माया गुण प्रकृति के तुन गुण दैवसी गुणोमयी मम माया दूरतया मामेव जो पपद्यन्ते मायामेतं करमचिते। जो व्यक्ति भगवान का शरणगत होता है वो माया से मुक्त हो जाता है। ये जो माया गुण प्रकृति के गुण, ये सत्व रज तम जो जीव को बंधन करता है, लेकिन आपको बंधन नहीं करता है, इसलिए कहा गया माया गुण। माया के गुण के द्वारा आप वशीभूत तो नहीं है, आप माया का गुण का स्वामी है। एवं आप में क्रोध कहां से आ सकता है? प्राकृतिक जगत का बद्ध जीव जो होता है उसका क्रोध होता है। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अते माया तारे दे संसार दुख। माया जड़ शक्ति है, जीव चित शक्ति है। अगर रस्सी इधर लगा और रखा हुआ है, रस्सी क्या खुद हमको बांध सकता है कि किसी व्यक्ति को हमको बांधने के लिए किसी व्यक्ति को रस्सी उठाना पड़ेगा, फिर रस्सी से हमको बांध सकता है? रस्सी तो अपना आप हमको तो बांधेगा नहीं। इसी प्रकार ये जो गुण है सत्व रज तम, ये जीव को बंधन नहीं करता है, तो क्या करता है? जीव अपने आप को बांध लेता है। कैसे बांधता है? क्योंकि वो कृष्ण को भूल जाता है। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख। भूली शब्द का अर्थ क्या है? इंग्लिश में क्या बोलता है इसको? फॉरगेट। अगर आपका कोई चीज याद नहीं है तो उसको आप भूल सकते हो? सवाल ही नहीं आता है। अगर किसी वस्तु का आपकी याद नहीं तो उसको भूलने का सवाल किधर आता है? अगर याद है तो भूल भी सकता है, ऐसा नहीं जान भूलेंगे नहीं। भूलने के बाद दोबारा याद होगा, फिर हम तीसरा बार भी भूलेगा। तो याद करना और भूलना ये हमारा साथ साथ में चलता है। तो कृष्ण भूली से जीव, चलो हम मान लेते हम कृष्ण को भूल गया, लेकिन अभी याद कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद उसको हम भूल भी सकते हैं, फिर हम अनादि बहिर्मुख हो जाएंगे, तो भजन करने से फायदा क्या है? अगर याद करने के बाद हम भूलते हैं तो फिर याद करने से फायदा क्या हुआ? क्यों यहां कहते हैं कृष्ण भूली से जीव, कृष्ण को भूल करके जीव बहिर्मुख हो गया, तो इसका मतलब हमको कहना पड़ेगा जीव को कृष्ण की याद था, तो याद जब था तो भूल गया, फिर भूलने के बाद फिर याद करना, फिर भूलेंगे तो इतना झंझट में पड़ने का जरूरी क्या है? फालतू ये सब ब्रह्मचारी रहना, गृहस्थ बनना, बिहार क्या बोलते हैं संन्यास लेना, वानप्रस्थ में जाना, सोलोमाला जप करना, सुबेरे मंगल आरती आना, भागवत पढ़ो, ये एकादशी निर्जला करो, ये करो, इतना झंझट में पड़ने का जरूरी क्या? अगर हम भूलने का हमारा स्वभाव है तो क्यों भूलेंगे, तो क्यों याद करेंगे फालतू? जैसे बोलते ना जावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कित्ता घृतम तिवेत, जब तक जिएंगे शांति से जिएंगे, ऋण करके घी पिएंगे। जिसको शुद्ध करना करे, ना करे तो गाली देगा, तो क्या फर्क पड़ने वाला है हमको, देने दो गाली। यही तो है ना, जो कह रहे हैं वही तो मीनिंग तो ही आ रहा है। शास्त्र में इसको कहता है प्रागभाव, एक होता है प्रध्वंस भाव और एक होता है अन्योन्य भाव। जैसे आप गेहूं लेके जाओ, गेहूं को मिक्सचर में डाला, क्या निकलिया? आटा। अभी इसको गेहूं बोलोगे? इसको बोलते प्रध्वंस भाव। एक वस्तु से दूसरा वस्तु रूपांतरित होने के बाद वो पुनरा उसी वस्तु में आ नहीं सकता है, ये प्रध्वंस भाव होता है। प्रागभाव भूलने का बाद उसको साधन करने से जो प्राप्ति होता है कभी भूला नहीं जाता है, इसको बोलते हैं प्रागभाव। जो जीव का कृष्ण वैमुख, जो हमारा कृष्ण वैमुख हुआ, जिसका वजह से माया हमें दंड दे रहे हैं, उसको अगर हम याद करें बस शरण करें तो दोबारा भूलेंगे नहीं, इसका नाम प्रागभाव कहते हैं। तो हमारा क्या है? प्रागभाव, प्रध्वंस नहीं। और आत्यंतिक भाव, बाहिन्योन्य भाव, जो कभी हमारा पूरा हो ही नहीं सकता है, तो जिम में चीज है नहीं है। तो कृष्ण भूली, जो कृष्ण को भूलने का जो प्रवृत्तियां है, वो तो जीव का प्रागभाग में गिनती किया जाता है। क्यों? क्योंकि जीव कृष्ण को याद नहीं करता है। यही जो से मायातार गोलाए बांधी लो, जीव का गलती है। अगर आपका घर में कोई नौकर रखोगे और नौकर अगर बराबर काम नहीं करते, क्या करोगे आप? सुबह शाम तो खिलाते रहोगे, घर से निकाल दोगे, जाओ। तो हमको घर से निकाल दिया गया, हमारे जो शाश्वत घर अप्राकृतिक जगत में है उससे हमको निकाल दिया गया, क्योंकि हम कृष्ण का सेवा का वैमुख्य दोष से दोषी है। जब भी इस दोष से हम मुक्त हो जाएंगे तो कृष्ण सेवा प्राप्त करेगा और हमको भी नहीं कृष्ण को भूलेंगे। इसलिए कहते हैं दैव हैसी गुणमयी मम माया दुरत्तया। माया फोकट में किसी को बांधा नहीं है। जब जीव को कृष्ण सम्मुख से दूरवर्ती हो गया तो भी माया इसको बंधन किया। इससे पहले जीव बंधन नहीं है, क्योंकि जड़ा वस्तु रोशी यहां बोला ना, रोशी यहां अगर पड़ा रहेगा और रोशी हमको अपना आप तो बांध नहीं सकता है, रोशी को बांधने किसी व्यक्ति को सहायता तो चाहिए। उसी प्रकार माया जब देखता है जो कृष्ण सान्मुख को नहीं है, तो पहले से भगवान का आश्रीभूत माया के आदेश दिया गया है। अगर कोई जीव ऐसा कर्म करता है तुम उसको बंधन में डाल दो। तो माया का इतना शक्ति नहीं है, जोड़ा प्रकृति का इतना शक्ति नहीं है जो चीज वस्तु के ऊपर आक्रमण कर सकता है। हम तो चीज वस्तु है, हम तो जोड़ा नहीं है। लेकिन जब इस चीज वस्तु का बंधन करने का माया का समय आया, तो उन्होंने लिंग देह और स्थूल देह, देह दोनों देह को हमको प्रदान किया और उस देह का द्वारा हमको बांधा। इसी कहते हैं माया गुण और प्रकृति गुण, कर्मलिंगम सकाम कर्म से जाने जाने वाला। अभी सकाम कर्मों के द्वारा भगवान को कैसे जाना जा सकता है? अकाम सर्वकाम मुख्य काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन जजते पुरुष पराम। किसी का कामना हो किसी का कामना ना हो, वो अगर भगवान का आराधना करता है तो उसे भक्ति लाभ होता है। जत करोसी जजोन्नासी जजो होसी जदासी जत जत तपस्वी कुंते हो तत्पुरुष मदर मे सकाम भक्ति है। तो इस प्रकार सकाम भक्ति के द्वारा भी अगर कोई व्यक्ति भगवान का आराधना करता है तो क्या होता है? वो भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसलिए कहा कर्मलिंगम अनाम रूपम, जिसको कोई नाम या रूप ना हो। अपानी पादो जवन ग्रहिता पश्चदुचक्रो सिनत्य करना, हाथ पा नहीं है लेकिन खा रहा है। अपानी पादो जवन ग्रहिता, जवन शब्द खाना, हाथ नहीं पानी चल रहा है आ रहा है खा रहा है, पश्चदुचक्रो सब कुछ देख रहा है। सिनत्य करना कुछ भी नहीं लेकिन सब कुछ देख रहा है सुन रहा है। उपनिषद का श्लोक है, ये भगवान है जिसका कोई नाम रूप गुण कुछ भी नहीं है लेकिन प्राकृत तो नहीं है अप्राकृत तो है। प्राकृत तो हाथ पा नहीं है अप्राकृत तो हाथ पाव है। प्राकृत तो कर्ण नहीं अप्राकृत तो कर्ण है। प्राकृत तो चक्षु नहीं अप्राकृत चक्षु है। एवं भी तो जो भगवान है उस भगवान कैसे है, सत असत विमुक्तम। क्या कहते हैं, प्रकृति के व्यक्त अव्यक्त गुण से परे, अव्यक्त निधान नहीं बहुत तत्र का परिवेदना। गीता कहते हैं व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्त निधान नहीं बहुत तत्र का परिवेदना। पहले हम अव्यक्त थे बाद में व्यक्त हुआ फिर अव्यक्त में जा रहे, इसके लिए शोक का क्या कारण है। ये भगवान ये जो प्रकृति है इस प्रकृति के द्वारा जो प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त गुण इससे परे हैं। क्योंकि भगवान जब आविर्भूत होते हैं तब साधारण बालक जैसे आविर्भूत नहीं होता है, सुंदर सुसज्जित कपड़ा उपड़ा पहन के आते हैं। ये प्रकृति के गुण से परे भगवान। गानो उपदेश दिव्य गान का वितरण करने के लिए, माया मुग्ध जीवेर नाई सदकृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कृष्ण कोइलो वेद पुराण। गान उपदेश आयो, देखा है तो जीव तो बद्ध है अब इसको तो कुछ अपना अकेल तो है ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, उपदेश देना पड़ेगा। तो उपदेश देने के लिए क्या किया उन्होंने, वेद पुराण, साधु गुरु शास्त्र रूपे अपनारे जानान। साधु रूप में, शास्त्र रूप में, गुरु रूप में भगवान अपने आप को व्यक्त करते हैं। गान उपदेश है, उपदेश कौन देता है, भगवान देते हैं। क्योंकि गुरु भगवान का वही प्रकाश होता है। एक श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक है उदो पाने जथा उदो पाने संप्रदित कर, श्लोक है दूसरा अध्याय का। अगर इसका शॉर्टकट आंसर ये है, अगर आपको एक गिलास पानी में प्यास बुझ जाता है तो समुद्र में जाने का जरूरी क्या है। उदोपान शब्द का अर्थ है कुआ और संप्रदुत एक शब्द का अर्थ है समुद्र। बृहद जलाशय का जो काम होता है क्षुद्र जलाशय में पूर्ण हो सकता है, तो अब बृहद जलाशय में जाने का जरूरत क्या है। तो अगर एक गिलास पानी में हमारा प्यास बुझ जाता है तो सागर के पास पानी पीने के जाने का आवश्यक क्या है। इसका दूसरा मीनिंग कैसे समझेंगे, शास्त्र अनंत है, भगवान भी अनंत है, दोनों में किसी का सीमा संख्या है। अनंत भगवान है, राम सिंह बड़ा कितना नाम है कितना रूप है कितना लीला है, अनंत चलते रहता है। साधारण बौद्ध जी भी इसको समझ पाएगा, समझ पाने का संभव नहीं है। तो क्या करना पड़ता है, ये उदोपाना संप्रद कैसे आता है, क्योंकि इतना पढ़ने से अपना समय बर्बाद होगा और इतना रूपों का पीछे अगर भागते रहेंगे हमारा टाइम चला जाएगा। तो क्या करना चाहिए, एक ही शास्त्र और एक ही रूप। एक ही शास्त्र क्या है, कोई बोलेगा गीता है, कोई बोलेगा भागवत है, कोई बोलेगा वेद है, कोई बोलेगा महाभारत है, कोई बोलेगा उपनिषद है, कोई बोलेगा वेदांत है। ये शास्त्र क्या बोलता है, जब जो राजा होता है उस राजा का गुणगान करना चाहिए। अभी कांग्रेस है, अभी कांग्रेस का गुणगान गाओ, बीजेपी के गुणगान मत गाओ, जैसे वेस्ट बंगाल तृणमूल है, अभी आगे हमको बोलेगा सीपीएम सीपीएम कर, हमको पिटाई हो जाएगा। अभी तृणमूल तृणमूल करेगा तो हमको कुछ मिलेगा? तो जब जो राजा होता है उस राजा का गुणगान करना चाहिए। तो अभी के लिए राजा कौन है? महाप्रभु राजा है। कलियुग में राजा कौन है? गौर सुंदर। अभी गौर सुंदर का गुणगान गाओ, चैतन्य चरमित आज चैतन्य भागवत पढ़ो, इसका अगर गुणगान अभी गाते हैं तो राजा खुश, प्रजा भी खुश। राजा अगर खुश हो जाए तो प्रजा तो अपना आप खुश रहेगा। राजा को खुशी करना, अभी क्या राजा को खुश करने के लिए शिशी पढ़ना पड़ेगा, बाकी कुछ करो चाहे ना करो। विद्या भागवतावधि, विद्या का परिसमाप्ति भागवत में होता है। भागवत का परिसमाप्ति किधर होता है? चैतन्य चरितामृत में। यही भागवत का परिसमाप्ति है। भागवत पढ़ने का फल क्या है? शिशी में अनुराग। अगर चैतन्य चरितामृत व चैतन्य कथा में अनुराग नहीं होता है तो भागवत पढ़ना व्यर्थ है। कि भागवत का पूरा विषय वस्तु महाप्रभु ने आचरण करके दिखाया, और पूरा भागवत ये 16 नाम 32 अक्षर में स्थाई है। जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये पूरा भागवत इसमें चुपचाप बैठा हुआ है। तो हमें अगर एक गिलास पानी में सब कुछ मिल जाता है, मतलब क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा अगर हमें सब कुछ मिलता है, इतना सब जाने का जरूरी क्या है? इसको मुझे प्रमाण देना पड़ेगा ना। ब्रह्माज कलियुग का व्यक्ति वो बिना प्रमाण से कुछ स्वीकार नहीं करेगा। इसका प्रमाण क्या देते हैं? हरेर नाम एव हरेर नाम एव हरेर नाम एव केवलम करो नास्तिव्य 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 गतिरन्यथा। हो गया ना एक प्रमाण। हर से कहें प्रभु सुनो स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन करो परम उपाय। महाप्रभु स्वरूप स्वरूप दामोदर रामानंद कहते हैं, हे स्वरूप दामोदर, हे राय रामानंद, कोली काल में नाम संकीर्तन परम उपाय, दूसरा कुछ नहीं। और भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण जे धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। निरपराधे नाम लोले पाए प्रेमधन। तो एक ग्लास पानी में प्यास मिटता है कि नहीं होता है? तो सागर का तरफ दौड़ने का आवश्यक क्या है? कितना साल जिएंगे? इतना सारा बड़ा बड़ा ही मोटा मोटा बुक लेकर के पढ़ पढ़ के क्या मिलेगा? इससे अच्छा हरिनाम। हरिनाम में सर्वसिद्धि, सब कुछ हरिनाम में मिलेगा। ऐसा कोई वस्तु नहीं जो हरिनाम में नहीं है, और ऐसा कोई वस्तु नहीं जो हरिनाम का द्वारा प्राप्त तो नहीं किया जा सकता है। तो समस्त तो सार का सारांश क्या है? हरि इत्तो गियते, आद्य मध्य अंत्य च हरि सर्वत्र गियते। भागवत में क्या है? हरिनाम ही तो है। अभी क्या कर रहा है? प्रशांत माया गुण कर्म लिंग, ये तो हरिनाम ही तो है। और क्या है इसमें? सब हरिनाम है। हरिनाम में परिसमाप्ति है शास्त्र का। इसलिए यही कपिल देव को माता देवोति स्तव किया था, जन्नाम घृणान सपोचोपी, जिनका नाम लेने से चंडाल भी पवित्र हो जाता है। अहो वत सपोचोथ जिहाग्रे वर्तते नाम उतिभाम ते पुष्टे पुष्टे सुनुराज्या गृणंती गृहानुचूर्णाम। चंडाल धन्य है क्योंकि जो आपका नाम ले रहे हैं। गरियान श्रेष्ठ व्यक्ति है, बोला के वेद पाठ कर रहा है। चंडाल श्रेष्ठ वेद पाठ कर रहा है, कहा भागवत पाठ कर रहा है, कहा जिहाग्रे वर्तते नाम उतिभाम। जिसका जिहा में आपका नाम उच्चारित हो रहा है। इसलिए कहते हैं दानो उपदेशाय, भगवान उपदेश देता है क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभु कहे कहिलाम ए महामंत्र, घरे गिया जप यहा करिए निर्बंध, यहा होइते सर्व सिद्धि होइबे सवार, सर्वक्षण बोलैथे विधि नाही आर। महाप्रभु श्रीमुख से उपदेश दिया ये मंत्र, जब संन्यास ले, जिस दिन संन्यास ले रहे तो महाप्रभु उस दिन सब नवद्वीप वासी जिसका जो देना था भगवान को लाके दे रहे हैं, कोई लौकी ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई मिठाई ला रहा है, कोई चाइस ला रहा है, कोई कपड़ा ला रहा है, सब देते हैं प्रणाम करते हैं। रात को संन्यास लगा, भगवान का आकर्षण क्या है, बोला संन्यास में कम से कम उपदेश तो देकर जाओ, तो महाप्रभु यही बोला ये मंत्र, सबको ही उपदेश दिया, बाकी कुछ नहीं बोला, ये मंत्र सर्वक्षण बोलाई थे विधि नहीं यार, सब समय बोलते रहो। गृहीत उपदेशा, गृहीत ज्ञान उपदेशाय, भगवान ज्ञान उपदेश देते हैं सहज सरल। गृहीत देहम, भगवान अपना शरीर धारण करते हैं, जब असुर का आक्रांत होता है और सुर लोक का वैष्णव लोक का तकलीफ होता है, भगवान भगवान इस जगत में अवतीर्त होते हैं। नमामहि प्रणामं दुख समनस्तु तं नमामि हरि पराम, प्रणाम करने से दुख नष्ट होता है इसलिए नमामहि। कितना सुंदर भगवान है, पुरुषम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, पुराण पुरुष ये अंशुमान। अब देखो पूरा शास्त्र ने अंशुमान एक श्लोक में डाल दिया, ये अंशुमान ऐसे करके उनको स्तब कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं इतना स्तब के द्वारा। यहां पर एक दिया है रामानुजाचार्य का, ये हर व्यक्ति को भगवान को धन्यवाद करके श्लोक बोलना चाहिए, भवंत एवानु चरण निरंतरम प्रशांत निशेष मनोरथांतरम कदा हम एकांतिक नित्य किंकरम पहरिष्यामि सनाथ जीवितम। ये श्लोक के द्वारा प्रणाम किया, भगवान का जुड़ के प्रार्थना करना, आपका सेवा में कब हम खुश रहेंगे, पहरिष्याम सनाथ जीवितम। चैतन्य शिक्षा स्टक में विशेष श्लोक है, वकीन करो। इस प्रकार शास्त्र हमको उपदेश देता है और साथ साथ में क्या देता है, उपदेश का पालन करने का विधि भी बताते हैं। आज थोड़ा दो लाइन बोल देंगे किनका, सामानंद प्रभु का जाविर्भाव है, सामानंद प्रभु का नाम था दुखी कृष्णदास, उनका निवास था दंडेश्वर ग्राम, माता का नाम था श्री दूरू की दूरी क्या, और बाप का नाम था श्री कृष्ण मंडल। बहुत सारे पुत्र कन्या जन्म होने के बाद मर गया था, अंतिम समय के इस बच्चा का नाम दिया दुखी, कोई छुएगा नहीं, क्योंकि बच्चा को ऐसा नाम देते हैं जो नाम को उच्चारण नहीं करना चाहेगा, तो इसको इसका नाम दे दिया दुखी, कोई नजर नहीं डालेगा। तो दुखी हृदय चैतन्य प्रभु का शिष्य थे, तो हृदय चैतन्य प्रभु से आज्ञा लेकर के वृंदावन आए, वृंदावन है जीव गोस्वामी पाद का पास, वैष्णव शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे उस समय, श्रीनिवास और नरोत्तम तीनों वैष्णव शास्त्र में पारंगत होकर के, वैष्णव शास्त्र जो गौरीय सिद्धांत है वो गौड़ीय सिद्धांत को सिखा रहे थे। तो गौड़ीय सिद्धांत जानना आवश्यक है। हम जिस संप्रदाय में हैं उस संप्रदाय का सिद्धांत अगर हम नहीं जानेंगे तो हम लोगों को जवाब नहीं दे सकते। अगर कोई पूछा आपका संप्रदाय क्या है, बोला गौड़ीय संप्रदाय है। गौड़ीय संप्रदाय का समय सिद्धांत क्या है मुझे मालूम नहीं, खतरनाक हो गया ना। तो सबसे पहले अपना संप्रदाय का सिद्धांत जानना आवश्यक है। और बोले क्या, नहीं नहीं हम तो गौड़ीय संप्रदाय, हम तो मध्य गौड़ीय संप्रदाय है। और कोई बोले हम तो मध्य गौड़ीय संप्रदाय है, तो मध्य संप्रदाय कैसे हो गया? अगर हम मध्य संप्रदाय में हैं तो वेदांत सूत्र का भाष्य रचना करना क्या जरूरी था? बड़ा प्रमाण है कि नहीं? जयपुर में सब संप्रदाय लोग हम लोग का अटैक किया, गोविंद देव को ऊपर अटैक कर दिया, बोला संप्रदाय विहीन है, ये गौड़ी लोग संप्रदाय विहीन है, ये गोविंद देव का सभा नहीं करे, राधा रानी हटाओ यहां से, ये चार संप्रदाय में राधा रानी नहीं है, खाली ऑनली गौड़ी संप्रदाय में राधा रानी है। तो पहले हमारा सिर में डंडा मारा हुआ है, बोले संप्रदाय बहिर्भूत है, ये जो है ना हरे कृष्ण वाला जो भी है ये संप्रदाय भी नहीं, इसको कोई संप्रदाय नहीं है, इसको हटाओ यहां से, राधा रानी को हटाओ, एकल कृष्ण को पूजा होगा। ये चार संप्रदाय मिलकर हमको बहिष्कृत कर दिया। विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोला विद्याभूषण को भेजा, बोला हम गौड़ी संप्रदाय है, बोला ठीक है मानता आप गौड़ी संप्रदाय, आपका भाष्य किधर है? गीता भाष्य चाहिए, उपनिषद भाष्य चाहिए, वेदांत सूत्र का भाष्य चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का भाष्य चाहिए। चार भाष्य अगर है तो हम संप्रदाय में स्वीकार करेंगे। आपको चारों में से किसी को भाष्य है क्या? तो नहीं, मैं तो आपको संप्रदाय कैसे स्वीकार करूं? बोला कोई बात नहीं, हम भाष्य लिख के देते हैं आपको। तो अगर हम मध्य संप्रदाय भुक्त होते थे तो हमें भाष्य लिखने का जरूरी क्या? माधवाचार्य संप्रदाय भाष्य नहीं लिखा, गीता भाष्य नहीं किया, विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य नहीं किया, उपनिषद भाष्य नहीं किया, वेदांत सूत्र भाष्य नहीं किया, फिर भाष्य क्यों आया? तो बलदेव विद्याभूषण ने 7 दिन में गोविंद देव का आदेश से बा गोविंद देव का अनुज्ञा से वेदांत सूत्र भाष्य लिख के दे दिया, गीता भाष्य दे दिया, वेदांत सूत्र भाष्य, उपनिषद भाष्य दे दिया और विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य दे दिया। संप्रदाय हम लोग बीच में लटका देते हैं। तो जो भी है तो यही गौड़ीय शास्त्र और गौड़ीय सिद्धांत ये तीनों को सिखा रहे थे श्यामानंद नरोत्तम और श्रीनिवास। जीव गोस्वामी प्रभु दुखी नाम था उसका, जीव गोस्वामी पाद नाम थे उसका, ने दुखी को बोला जाओ दुखी तुम्हारा काम है निधुवन में झाड़ू मारना, सेवा दे दिया। अब रोज निधुवन में झाड़ू मारते थे और झाड़ू को लेकर के सीधा सिर में लगाए थे। क्यों लगाया था? वृंदावन का राज गौरकिशोर दास जी महाराज जो अभी वर्तमान चैतन्य मठ है जोगपीठ वहां पर दंडवत कर रहे हैं और दंडवत दे करके उलट पलट खा रहा है, ऐसा गोड़ागड़ी जिसको बोलता है गोड़ागड़ी दे रहे हैं। फिर जब उठा तो उनका सबक उसको शरीर से धूली झड़ रहा है, बोलता मैं इतना गया गुजरा व्यक्ति है जो हमारा शरीर में धाम का धूली लगा नहीं रहना चाहिए, ये धाम का धूली हमारा शरीर में लगा नहीं रहना चाहिए क्या? हम इतने खराब व्यक्ति है जो धाम का धूली हमारा शरीर से तुम निकाल रहे हो? गौरकिशोर दास जी महाराज ऐसे कह रहे हैं, से धामेर धुलाए हमारा दी गोड़ा गोड़ी अप्राकृत, मैं भजन भूल गया बंगला भजन है, अप्राकृत धूली से ब्रजधाम का व गौर धाम का धूली अप्राकृत है। गौर ब्रजवने भेदना देखिब हईब ब्रजवासी, गौर धाम और ब्रजधाम इसमें भेद नहीं देखना चाहिए, तो हई ब्रजवासी ब्रजवासी हो जाएंगे हम लोग, गौर ब्रजधाम भेजना देखी वो हई ब्रजवासी। तो समान कृष्ण दुखी रोज झाड़ू मारते थे यार लगाते थे, उनका झाड़ू के द्वारा राधा रानी प्रसन्न हो गया। झाड़ू का कितना महत्व है देखो, ये झाड़ू मैं तुम्हारे कोई दंडवत, ये झाड़ू को प्रणाम करना चाहिए, रात दिन झाड़ू को दंडवत करो। क्यों? के झाड़ू का द्वारा प्रताप बुद्ध को कृपा मिल गया, झाड़ू का द्वारा मिला ना, प्रताप बुद्ध का कृपा महाप्रभु किसी को झाड़ू के द्वारा किया, तो प्रताप ने झाड़ू मारना शुरू किया, दुख ने झाड़ू मारना शुरू किया, राधा रानी ने कृपा कर दिया। तो झाड़ू का कितना हो, झाड़ू जितना है ना सबको प्रणाम करना चाहिए, झाड़ू को रखो और दंडवत करो, क्योंकि वो साफ सफाई में लगा हुआ है, कितना महत्व है झाड़ू का। राधा रानी कृपा किया और बोले इसको कृपा करना ही पड़ेगा, कितना सुंदर हमारा निधु भवन को साफ सफाई रखता है। प्रसन्न हो गया राधा रानी, किसी कृपा किया, नुपुर को छोड़ दिया उधर। सुबेरे ललिता को, हे ललिता जा, हमारा नुपुर किधर गिर गया, जाके ले जा, और निधु भवन किधर गिरा होगा जाना, मिल जाएगा। तो दूसरे दिन सुबेरे जब झाड़ू मारा था, चमक आ रहा है जैसे मोनी जैसे, जाकर उठाया तो नुपुर। अरे भक्ति सिद्धांत और पारंगत है, जीव गोस्वामी का शिक्षा शिष्य है, बोला इसमें कुछ रहस्य है। उन्होंने नुपुर को अच्छा से बांध के रखा और ललिता की लड़की का वेश लेके आए, बोला हे ब्रजवासी, कुछ मिला है क्या आपको, क्योंकि हमारा घर का जो बहू है वो कार रात को इधर आए थे और उसका पाव से नुपुर गिर गया, उसका सास बहुत गाली देगा, अगर आपको मिला, आप तो रोज झाड़ू मारते हो, हम देखते हैं आपको जो दूर से आप झाड़ू मारते हो, इसलिए अगर मिला तो आपको दे दो, नहीं तो हमारा जो सखी है वो गाली खाना पड़ेगा उसको, उनका सास उसको बहुत गाली देगा। ये समझ गया कि लोली जो भी है अपराकृत तो गोपी लोग का शरीर का कांति किससे छिपा हुआ सकता है। बोला जिसका है वो अगर आके ले जाए तो हम दे देंगे। बोला घर का कुलोवधू है, असूर्य पुष्या, सूर्य को भी दर्शन नहीं करता है, ये राधा रानी सूर्य पूजा रोज करता है, तो आप कैसे बाहर कैसे आएगा। बोला तो नहीं मिलेगा। तो राधा रानी हंसते हंसते आया, आकर के दुखी को अपना चरण का नीचे बैठाया, राधा रानी सिंहासन में बैठ गया, दुखी को चरण का नीचे बैठाया, उसका हाथ से नूपुर लिया और अपना चरण का जो जबक, जबक शब्द करते क्या है, आलता, जिसको मेहंदी बोलते हैं हम लोग अलग अलग भाषा, वास्तव में मेहंदी नहीं आलता कहा जाता है उसको, तो इस जबक को लेकर के दुखी को तिलक बना दिया। बोला दुखी आज से तुम्हारा नाम समानंद, तुम शाम को आनंद दे सकते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है समानंद। यही कितना सौभाग्य, जो चरण का धूलि कृष्ण को नहीं मिलता है, राधा रानी का चरण धूलि कृष्ण कितना कोशिश करता है उस चरण को अपना सिर में रखने के लिए, राधा का चरण कृष्ण चाहते हैं हमारा सिर में रहे, लेकिन राधा अपना चरण कृष्ण का सिर में देते ही नहीं है, आज देगा कैसे, पति है कोई पत्नी आपका चरण किसी पोते के ऊपर देगा क्या, नहीं कोई पोते मांगेगा जो तुम्हारा चरण हमारा सिर में लगाओ, ये कैसा पोते पत्नी है। बोलता है दही पद पल्लव मुदारम, दही पद पल्लव मुदारम, आपका चरण हे राधे हमारा सिर में लगाओ। जयदेव बोला क्या गलत लिख दिया मैंने, इतना गलत हम कैसे लिखा, नहीं लिख सकता, पूछ के चला गया, नहीं होगा, काट दिया। जयदेव स्नान करने चला गया, आधा रास्ता से कृष्ण जयदेव बन के आ गया, नहा धोकर कपड़ा दो, तुरंत कपड़ा पहना, कपड़ा पहनने के बाद बोलो किताब किधर है, वो मुझे कुछ लिखना भूल गया ना, उधर रखा जाओ, पेन लिया लिख दिया दही पद पल्लव मुदारम, लिख दिया तुरंत, आके खाया, खाके चला गया। जयदेव का पत्नी वो भी खा लिया, जयदेव नहा धो के आता है, देखता है प्रसाद कुछ नहीं है, बोला हमारे लिए खाना किधर है, बोले तुम तो अभी खा के गया, बोले मैं अभी नहा के आ रहा हूं, खाया किधर, बोले हो नहीं सकता है, मैं आपको खिलाया, बोले मैं खाया ही नहीं। जयदेव कुछ संदेह हुआ, बोला जयदेव के भूख देखा तो देखता लिखा हुआ देरी पद पर लमुदारम, पर तुम धन्य हो, तुम कृष्ण को खिलाया हो, कृष्ण जयदेव बन के आया था। अभी लास्ट में जो भी बंधा गुजरा था पति पत्नी दोनों मिलकर खा गया साथ में। यही दही पद पल्लव उदारम, राधा रानी मान करके बैठा हुआ है अपना ऐसा करके बोल गया। बस कृष्ण इधर स्तुति कर रहा है, हे राधे प्रसन्न हो जाओ, हे राधे प्रसन्न हो जाओ, आर ऐसा गलती काम नहीं करेंगे। कान पकड़ता है, नाक पकड़ता है, बाल पकड़ता है, सिर में मिट्टी में सिर ठुक रहा है, राधा रानी प्रसन्न नहीं है। फिर क्या करेगा, मुश्किल हो गया। गोली देव समझा रहा है, सब समझा रहा है। लास्ट में कुछ ना करके जहां पर चरण रखा था वहां पर सिर रख दिया। तो राधा ने क्या किया, ऐसा करके पाव को ऊपर उठाया, तो पाव उठाया, एक प्रणाम करने जा रहा है, एक पाव उठा रहा है, पाव कहां जाएगा, जिन्होंने पकड़ा बोले मिला, आज मिला, बहुत दिनों के बाद मिला, सीधा चरण पकड़ के दही पौधे पर लो मुदारम हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यही दही पौधा पल्लव उदारम, ओ जावक जिसका कृष्ण ने कितना कोशिश करता लेने के लिए, राधा रानी का चरण में आलता लगाएगा, कौन लगाएगा, कृष्ण लगाएगा। चरण कैसे उठा के देख रहे हैं, अभी आलता क्या लगाएगा, चरण देख के मुग्ध हो गया, अरे क्या चरण है, सब काला रुआ रखा हुआ उसमें, आलता लगाएगा, सब तुली है, आलता सब रखा हुआ है, अभी लगाने जाएगा, लेकिन चरण देख के कृष्ण मुग्ध, कृष्ण का हाथ ऐसा ही रह गया, चरण एक हाथ में ऐसे रखा रह गया, मंजूरिया एक धक्का मारा कृष्ण को, हक कुछ होने वाला नहीं तुमसे, वहां से कृष्ण को धक्का मार के हटाया, मंजूरिया आकर के राधा रानी का चरण में जाबो को लगा। कृष्ण कहा क्या दुर्भाग्य, हमारा इतना भी गुण नहीं है जो राधा रानी का चरण में जाबो को लगाऊं, ये जाबो का महत्व है, इसको बोलता है आलता। राधा रानी खुद अपना चरण का आलता दे करके दुखी का सिर में तिलक करके नाम दिया समानंद, ये समानंद प्रभु है। अभी सोचो इनका शिष्य रसिक मुरारी है। यही समानंद प्रभु गौर किशोर दास जी महाराज को जो भी प्रणाम करते हो सत्यानाश होगा तेरा आशीर्वाद, जो भी प्रणाम करता है उसको सीधा आशीर्वाद देता है, तेरा सत्यानाश हो जाए। अभी बोलो तो कैसे वैष्णव लोग कैसे है, लेकिन जब भक्ति सिद्धांत शरीर से उड़ाता है तो ऐसा लेता है उसको शरीर में लगाता है, उसको प्रणाम नहीं करना पड़ता है, सामने बैठाएगा, जितना चरण धूलि रहेगा सब भक्ति सिद्धांत शरीर ठाकुर में पूरा शरीर में लगाएगा। जाबुक लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, क्या नाम दिया था भक्ति ठाकुर का, श्री बारस भानवी देवी दैत दासी, ये नाम है। चलो बहुत टाइम हो गया, हरे कृष्ण, जय श्रीमद भागवत मंत्रराज की जय, समानंद प्रभु की जय, नित्य गौर प्रेमानंद, हरि बोल, दादा बोलने जाएगा तो बोलते रहेगा।